आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।
नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से और आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई माइग्रेशन के बारे में। हाल ही में न्यू साउथ वेल्स ने इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-2025 के माइग्रेशन प्रोग्राम को आवेदकों के लिए जारी कर दिया है, यानी खोल दिया है। यानी जो लोग राज्य में परमानेंट रेजिडेंसी पाना चाहते हैं वे वीजा पाने से जुड़ी कार्यविधि को शुरू कर सकते हैं। तो राज्य के इस वित्तीय वर्ष के नए नियम और नए बदलाव कौन से हैं, इसी सिलसिले में आज हम जुड़ रहे हैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट नेहा सिंह से। SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा।
थैंक यू नताशा।
तो नेहा, इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 और 2025 के न्यू साउथ वेल्स माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं?
देखो नताशा, न्यू साउथ वेल्स ने थोड़ा लेट अनाउंस किया अपना रिक्वायरमेंट्स, वो कल ही परसों ओपन हुए हैं। काफी देर से लोगों को इंतजार था कि न्यू साउथ वेल्स अपनी फाइनेंशियल अपनी जो स्टेट नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट्स है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अनाउंस करेगा, तो फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो बहुत अच्छी चीज़ उनके लिए ये रही है कि उन्होंने जो 491 था रीजनल प्रोविजनल वीजा, उसमें तीन पाथवेज अनाउंस किए हैं इस बार। फर्स्ट पाथवे उनका जो लोग रीजनल में काम कर रहे थे किसी एम्प्लॉयर रीजनल एम्प्लॉयर के साथ, उनके लिए है। पाथवे टू उन लोगों के लिए है जो रीजनल में रह रहे हैं, ठीक है, और उनका ऑक्यूपेशन अवेलेबल है बट वो उनको स्टेट इनवाइट करेगा। एंड थर्ड पाथवे जो उन्होंने नया इस साल इंट्रोड्यूस किया है वो ग्रेजुएट रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए है, जिन्होंने अपनी वहीं रहकर न्यू साउथ वेल्स रीजनल में से ही पढ़ाई करी है, उन लोगों के लिए ये पाथवे ओपन किया है। सो विच इज अ वेरी गुड पाथवे, जो लोग वहाँ रीजनल में न्यू साउथ वेल्स में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी हो गई है टू बी एप्लीकेबल फॉर द स्टेट नॉमिनेशन। 19 रिक्वायरमेंट्स उनकी ज्यादा चेंज नहीं हुई है। उन्होंने बोला है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन उनकी न्यू साउथ वेल्स की जो 190 की स्किल लिस्ट में, अगर आपका ऑक्यूपेशन उस एनसीओ कोड में फॉल करता है और आप पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हो, या इफ यू आर एन ऑफशोर एप्लीकेंट और आप पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली ऑफशोर हो, तो आप 190 के लिए एलिजिबल हो। यू कैन अप्लाई एंड वेट फॉर द नॉमिनेशन प्री इन्विटेशन। तो यस, न्यू साउथ वेल्स ने कुछ अच्छी चीजें भी इंट्रोड्यूस की है उन्होंने, बट 19491 के लिए अपनी इंडिविजुअल स्किल लिस्ट 190 की और रीजनल स्किल लिस्ट 491 के लिए इंट्रोड्यूस कर दी है। हाँ देखो, न्यू साउथ वेल्स सिर्फ एप्लीकेंट जो वहाँ न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं या ऑफशोर एप्लीकेंट्स है वो ही है, इंटर स्टेट एप्लीकेंट्स के लिए न्यू साउथ वेल्स ओपन नहीं है। तो यस, जो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं स्टेट के वो ही अप्लाई कर सकेंगे, सारे नहीं कर पाएंगे।
अच्छा नेहा, हर राज्य अपने क्षेत्र के जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए माइग्रेशन प्रोग्राम में उन ऑक्यूपेशंस को शामिल करता है, तो न्यू साउथ वेल्स ने ऐसी कोई लिस्ट, ऐसे कोई क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं?
जस्ट बताया, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग सेक्टर, ठीक है, उनका रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर उनके लिए बहुत प्रायोरिटी का है। शेयर इकोनॉमी, डिजिटल एंड साइबर इज वन ऑफ द सेक्टर विच इज वेरी इन प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द स्टेट। एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स उन्होंने इस बार फिक्स किए हैं अपने, क्योंकि उनके कुछ टारगेट सेक्टर्स है और उनके कुछ क्रिटिकल जो स्किल्स उनके जिनकी शॉर्टेज हो रही है स्टेट में उनके लिए उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर सेट कर दिए न्यू साउथ वेल्स में. सो उनकी लिस्ट भी उस प्रायोरिटी सेक्टर के अकॉर्डिंगली उन्होंने बनाई. अगर आप देखो तो 194-91 में कुछ हॉस्पिटैलिटी के जो कि बहुत कॉमन ऑक्यूपेशन थे, अकाउंटेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, कुक्स शेफ्स भी नहीं है. तो यस, उन्होंने अपनी कुछ प्रायोरिटीज सेट की है जिसके अकॉर्डिंगली वो इन्विटेशन देंगे, सबको नहीं देंगे.
अच्छा, इस साल राज्य सरकार ने एक नई डायरेक्ट एप्लीकेशन पाथवे रीसेंट ग्रेजुएट्स जो कुछ रीजनल इंस्टीट्यूशंस में राज्य में पढ़ रहे हैं उनके लिए घोषित की है. थोड़ा उसको हमें विस्तार से बताइए कि वो क्या है.
हाँ जी, जो पाथवे 3 है 491 का, जो रीसेंट ग्रेजुएट्स फॉर रीजनल न्यू साउथ वेल्स है, जो लोगों ने अपनी स्टडीज जो बैचलर्स और हायर डिग्रीज में कंप्लीट की है, नॉट ऑल बट बैचलर्स और हायर डिग्रीज, जिन्होंने न्यू साउथ वेल्स रीजनल इंस्टीट्यूशंस में से करी है, वो रीसेंट ग्रेजुएट्स में काउंट होंगे. ठीक है, उनकी जो स्टडीज है वो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन से भी क्लोजली रिलेटेड नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होनी चाहिए. और रीसेंट ग्रेजुएट्स वो उनको काउंट करेंगे जिन्होंने पिछले 2 सालों में फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द न्यू साउथ वेल्स नॉमिनेशन, उनकी पिछले 2 सालों में स्टडीज कंप्लीट हुई होनी चाहिए. सो वन ऑफ द गुड ऑप्शंस फॉर पीपल जो उन्होंने वहां से स्टडी करी है, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा रहेगा रिसेंट ग्रेजुएट का. तो यस, दिस इज अ गुड ऑप्शन. बट यहाँ पर भी न्यू साउथ वेल्स की रीजनल स्किल लिस्ट आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में फॉल हो रहा है टू बी एलिजिबल फॉर पाथवे 3 फॉर न्यू साउथ वेल्स.
अच्छा जी, यानी कि हर एक ग्रेजुएट जो इन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है वो एलिजिबल नहीं भी हो सकता है.
हाँ, जिन्होंने वेट सेक्टर में किया, मतलब बैचलर्स से नीचे की करी है, वो एलिजिबल नहीं होगा. उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि बैचलर्स डिग्री और अबव वाले एलिजिबल होंगे.
जी, और किसी प्रकार का कंसेशन राज्य सरकार ने घोषित किया अपने माइग्रेशन प्रोग्राम में?
न्यू साउथ वेल्स ने एक टिस्मेट इनकम इंट्रोड्यूस करी है इस बार.
जी,
तो पाथवे 1 में 491 के लिए जो लोग रीजनल किसी एम्प्लॉयर के साथ अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम कर रहे थे पिछले 6 महीनों से, तो वो एलिजिबल है पाथवे 1 के अंदर. इसमें कोई स्किल लिस्ट फॉलो नहीं होगी न्यू साउथ वेल्स के तरफ से जो मेंशन की गई है. कोई भी ऑक्यूपेशन अप्लाई कर सकता है, बट उन्होंने बोला है कि 6 महीने तुमने काम करा होना चाहिए एक ही एम्प्लॉयर के साथ जो कि रीजनल में एस्टेब्लिश्ड है, और आप टिस्मेट इनकम लेते होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. अब टिस्मेट इनकम जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंगली दैट इज 73,150.
जी जी,
ठीक है. बट उसने कुछ कंसेशन भी उन्होंने अलाउ किए, 90% कंसेशन, 10% कंसेशन ऑन द टिस्मेट इनकम. बट वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपेशन उस कंसेशन टिस्मेट इनकम की लिस्ट में फॉल करता है कि नहीं करता है. और उस इसमें क्या करना है, अगर आप एलिजिबल है तो आपके खुद के एम्प्लॉयर को पहले कंसेशन के लिए टिस्मेट इनकम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अप्रूवल लेकर रखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द नॉमिनेशन फॉर द स्टेट.
जी नेहा, आपके अनुसार न्यू साउथ वेल्स के माइग्रेशन प्रोग्राम का जो इस वित्त वर्ष जारी किया गया वो क्या अब और मुश्किल बना दिया गया है या आसान बना दिया गया है?
देखो, न्यू साउथ वेल्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमेशा से रही हैं.
जी,
क्या उन्होंने कहा कि आपकी अगर पहले से EOIs है, आपने अप्लाई कर रखी है, तो वो उनको भी कंसिडर करेंगे. प्लस उन्होंने पहले क्या होता था कि वो आपका अगर क्लेम कर रहे हो आप अपना स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो वो डीम्ड डेट से काउंट करते थे आपकी जो स्किल असेसमेंट की आपकी डीम्ड डेट है. बट नाउ दे हैव सेड कि आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज दे विल काउंट पोस्ट स्टडी एक्सपीरियंस वुड बी यू विल बी एबल टू क्लेम दैट एक्सपीरियंस इन योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो ये भी एक नया चेंज रहा है न्यू साउथ वेल्स के क्राइटेरियाज में, विच इज वन ऑफ द गुड चेंजेस विच दे हैव इंट्रोड्यूस. क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन रहता था पहले कि हम अपना एक्सपीरियंस कब से क्लेम करना शुरू करें. तो दिस इज वन ऑफ द गुड चेंजेस विच इज कमिंग अप विद न्यू साउथ वेल्स.
जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी आज हमसे जुड़ने का और हमें न्यू साउथ वेल्स के माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में ये जानकारी देने का.
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।